ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கல் ஆப் த்வித்திய கண்ட கே दूसरे मंत्र का श्रवण कर रहे थे. पहले में तो सृष्टि की उत्पत्ति बताई थी कि जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं और फिर वो अपनी उपाधियों को जला करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है. इसी प्रकार से ये सृष्टि अक्षर से परमात्मा से उत्पन्न होती है और ये भी जैसे अग्नि का स्वभाव है अपनी उपाधि को जला करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, इसी प्रकार से अग्नि की तरह ही आत्मा जो है जिसे अहम अहम कहते हुए भी विस्फुलिंगा ही है. परमात्मा से जीव सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर यदि बोध हो गया, ज्ञान हो गया तो ये उपाधि को जला करके फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है. तो स्वरूप तटस्थ लक्षण के द्वारा ये सुना था. अब देखो ये निषेध मुखेन यहां बताया जा रहा है दूसरे मंत्र में कि परमात्मा दिव्य है. दिव्यो ही मूर्तः पुरुषः सबाही अभ्यंतर वही अजह अप्राणो ही अमन शुभ्रो ही अक्षरात परतः परः. ये देखो दिव्य है और ये अमूर्त है, मैंने इसकी कोई मूर्ति नहीं होती जिसका वर्णन किया जा रहा है. ये अमूर्त है, मूर्त पदार्थ नहीं है. दिव्य है, इसकी दिव्यता क्या है? इसकी दिव्यता ये है कि ये स्वतः है, स्वतः सिद्ध है. इस की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है. जितने भी संसार की वस्तुएं होती हैं वो सब प्रमाण सिद्ध होती हैं. लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्र न, लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है. किसी चीज का, किसी वस्तु का लक्षण बताते हैं, किसी वस्तु को प्रमाण से फिर सिद्ध करते हैं. केवल लक्षण मात्र से सिद्धि नहीं होती है और न केवल प्रमाण मात्र से सिद्धि होती है. तो देखो प्रमाण बहुत है. जैसे पहले आप दुनिया को सिद्ध करोगे तो कैसे सिद्ध करोगे? मैं बैठा हूं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं? तो आपको अपनी आंख से, अपने कान से मालूम पड़ेगा. मेरे होने में आपकी आंख प्रमाण है. प्रमाण का मतलब होता है कि ज्ञान का जो साधन, प्रमाकरणम प्रमाणम. जो किसी वस्तु के सिद्ध करने का, किसी वस्तु के ज्ञान का जो उपकरण है, साधन है, उसी को प्रमाण कहते हैं. तो उदाहरण में आपको ये कह रहा था कि भाई ये जो दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, इसकी कौन से प्रमाण से सिद्ध करोगे? तो ये बात देखिए कि मैं बैठा हूं इसमें प्रमाण आपकी आंख है, मैं बोल रहा हूं इसमें प्रमाण आपका कान है. तो इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं. जो इंद्रियों से सिद्ध हो गए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. एक अनुमान होता है जो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है. अनुमान से भी ज्ञान होता है, अनुमिति ज्ञान उसे कहते हैं. जैसे कहीं आप धुआं देखते हो तो वहां अग्नि का अनुमान हो जाता है. अग्नि तो नहीं दिखती है पर आप धुएं के माध्यम से अनुमान करते हो, या अनुमान प्रमाण है, मैंने अनुमान लगा करके ज्ञान हुआ है. दूसरा है, तीसरा है उपमान. सदस्यता इसमें होती है। जैसे किसी ने पूछा किसी से कि जंगल में रहने वाली गाय कैसी होती है, तो बोले कि जैसे गांव की गाय होती है, जैसे ये शहरों में गाय रह रही है सेम ऐसी ही होती है। तो आप जंगल में गए और वचन का संस्कार था, आपकी आंख का सन्निकर्ष हुआ, संबंध हुआ, और आपको मालूम हो गया कि ये गांव की गाय के समान ये जंगल में रह रही है, जो ये जो जानवर रह रहा है ये उसके समान है, इसलिए यही गवय होगा। तो सदस्यता से भी उपमान भी एक ज्ञान में प्रमाण है। और एक शाब्द होता है शाब्द ज्ञान, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, यदि स्वर्ग की इच्छा हो तो आपको यजन करना चाहिए। ये स्वर्ग में क्या प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अनुमान प्रमाण है कि उपमान प्रमाण है? तो ना तो स्वर्ग प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान भी नहीं हो सकता है, तो उसका सादृश्य भी नहीं हो सकता है, माने उपमान भी नहीं हो सकता है। तो शब्द से मालूम पड़ता है, शब्द से भी ज्ञान होते हैं। तो स्वर्ग आदि के ज्ञान में शब्द प्रमाण है, शब्द। जैसे राम राजा बभूव, राम राजा हुए हैं, इसमें क्या प्रमाण है? उस समय का तो कोई व्यक्ति भी नहीं है जो देखा हुआ हो आकर कह दे हमको कि राम राजा हुए हैं, तो शब्द ही प्रमाण है इसमें। फिर एक प्रमाण होता है अर्थापत्ति। पांचवा प्रमाण होता है कोई व्यक्ति बहुत मोटा है और बोले कि हम खाते नहीं है, दीवाना भूंगते, तो दीवाना भूंगते तो रात में भूंगते, दिन में नहीं खाते होगे तो रात में जरूर खाते होगे, ये अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। उसके मोटापा को देखकर कुछ भोजन का ज्ञान होना अर्थापत्ति से हो जाएगा, हुआ। अनुपलब्धि एक प्रमाण होता है, मैंने यहां घड़ा नहीं है अनुपलब्ध है, ये भी एक ज्ञान है। फिर संभव भी ज्ञान होता है, जो पुराणों में होता है मायायाम सर्वसंभव, अद्भुत अचिंत जो घटनाएं उसमें लिखी है, तो उसमें मानना पड़ता है कि ये जो लिखी हुई है बातें ये सही ही होंगी। ऐति है इतिहास प्रमाण होता है कैसे हुआ है। चेष्टा भी प्रमाण है, आप किसी को इशारा करते हो या आंख तरेर देते हो, लाल आंख कर देते हो, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये क्रोध कर रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। तो इन इतने प्रमाण हैं, ये इतने प्रमाणों में कौन सा प्रमाण से सिद्ध होता है या मूर्त, ये पुरुष ये जो दिव्य है। ना तो उसका प्रत्यक्ष होता है और ना तो उसका अनुमान होता है, ना तो उपमान है कि कोई उसके सदस्य हो तो बता दें, और ना शाब्द ही प्रमाण है। देखो आपको यह शंका हो जाएगी कि शाब्द तो प्रमाण मानते हैं, शाब्द प्रमाण है परमात्मा के होने में, तो शब्दोपि बोधक निषेधतयात्ममूला मर्थोक्त माह यदि रीते न निषेध सिद्धि, शब्द प्रमाण नहीं उसके होने में। अच्छा मैं हूं, इसमें आपको बताना पड़ेगा क्या कि मैं हूं, मेरा आंख बंद होए, मेरे कान बंद होए, यहां प्रकाश न होए, मेरी जीभ बंद हो, सब कुछ बंद होए, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं, ये शब्द कहने की जरूरत नहीं कि तुम हो, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो ये इसमें शब्द प्रमाण नहीं है। इसमें अर्थापत्ति भी नहीं है, मोटा तक है, मोटा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, अनुपलब्धि भी नहीं है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और ये ना ऐतिहासिक है, ना संभव है, ना चेष्टा से मालूम पड़ता है, अपितु सारे प्रमाण इसी से सिद्ध होते हैं, इसलिए दिव्य है। आपकी आंख से जो प्रत्यक्ष हो रहा है इसके बिना नहीं हो सकता प्रत्यक्ष, अर्थात जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूप परमानंदानंद द्वय है, ये कूटस्थ है, अभिचाली अनुपाउपजन विकार रहित है, परात्मा परिपूर्ण जो परमात्मा है, इस परमात्मा के होने में ही अर्थात आत्मा के होने में ही सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं। इसलिए किसी ग्रंथ में बात आई है कि प्रमाता चा प्रमाणचा प्रमेय प्रमितिस्तथा ये सब प्रसादा सिद्ध्यन्ति सिद्धौ किम अपेक्षते। प्रमाता को वो सिद्ध करता है, प्रमाता को प्रमाण को भी सिद्ध करता है, प्रमेय को भी सिद्ध करता है, प्रमिति को सिद्ध करता है। जिसके प्रसाद से सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं उसकी सिद्धि में किसकी अपेक्षा है, किसकी जरूरत है, अर्थात किसी की जरूरत नहीं है। तो ये दिव्यो ही अमूर्ता है, ये दिव्य है और अमूर्त है, इसकी कोई मूर्ति नहीं, ये निर्गुण निराकार निर्विशेषक निर्धर्मक है, इसकी कोई आकृति नहीं है। और फिर पुरुषा है, ये पुरुष क्यों कहा कि जब दिव्य कह दिया ही अमूर्त कह दिया तो फिर मालूम पड़ेगा कि भाई ये सातवें आसमान में बैठा होगा कहीं। पुरुषा का मतलब है कि ये शरीर में बैठा हुआ है। आप तो इस शरीर को ही पुरुष समझते हो ना, नरे आप ये गंदी वस्तु को ही पुरुष समझते हो, तो इससे भिन्न पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वात् पुरुषः या पुरुषेति पुरुषः, जो पूर्ण है परात्पर पर पूर्ण परमात्मा है उसे पुरुष कहते हैं। फिर कहते हैं सब बाह्य अभ्यंतर वजह, ये सब बाहर भी है भीतर भी है, बाहर भी है भीतर भी है, तो दोनों विरुद्ध बातें इसमें हो सकती हैं, संभव है। बड़ी विचित्र बात है, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न आपको कोई आपका प्रिय व्यक्ति वहां मिल गया, कोई वस्तु भी दी गई स्वप्न में, वो वस्तु जो दिख रही है या वस्तु जो व्यक्ति मिला हुआ है वो आपसे भिन्न है कि आप हैं स्वप्न में जी, आप है ना, क्योंकि आपसे जो कोई भिन्न होता तो या तो कहता कि मैं भी साथ चलता हूं बाहर, या थोड़ी देर हम जागने पर भी थोड़ी देर उसकी प्रतीति होती, तो जब आप थे वहां सुषुप्ति स्वप्न में तब तो वह पुरुष और व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया मालूम पड़ रही थी, वो तब तक मालूम पड़ी जब तक आप स्वप्न में थे, और जब आप स्वप्न से जागृत में आ गए तो वो नहीं रही, तो आपके बिना नहीं रही, तो आपके बिना वो दूसरी चीज कैसे हो सकती है। तो जो व्यक्ति था वो आपका मित्र था स्वप्न में, वो आपके जीव से उसका जीव आत्मा अलग था कि एक ही था, अलग नहीं था। बस जब व्यक्ति का मन इतना तुच्छ छोटा है, जब उसके मन में इतना बड़ा सामर्थ है, तो जो समष्टि का मन होगा, ये तो हमारी व्यष्टि का महात्मा है ना, हमारी व्यष्टि मन का महात्मा है, जो समष्टि मन वाला होगा उसका क्या महात्म होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। एक छोटा सा व्यक्ति ऐसे ऐसे जादू के खेल दिखा देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया, तो अचिंत महामाया के योग से परमात्मा भी इसी प्रकार से लीला रच देवे, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। एक बार आगरा हम गए थे तो मैं वहां एक जादू बाजीगर खेल दिखा रहा था, और तब तक लाल बत्ती में एक गाड़ी वहां रुकी पास में, और मालूम पड़ा कि ये कलेक्टर है, घुस करके वो उसको आगे कर दिया लोगों ने, पुलिस भी साथ में थी, बोले क्या दिखा रहे हो, तो उन्हें चरण छुए, बाजी करने और कहा हुजूर देखो हम जो दिखा रहे हैं, लोगों से बोले कि देखो भाई यहां कोई चोर आया हुआ है, सो अपनी घड़ी ठीक ठाक रखना। जी ठीक ठाक रखना, तो लोगों ने अपनी घड़ी देखी, कलाई में बंधी हुई थी और फिर देखने लगे गौर से बाजीगर की तरह कि देखो ये क्या करता है। घड़ी के लिए तो हमारी हिदायत दे दिया कि सावधान रहना। तो फिर एक ही सेकेंड में सारी की सारी घड़ी उस कलेक्टर के पैंट में चली गई, लोगों को फिर सावधान किया, उनका ध्यान फिर अपनी घड़ी की ओर ले गया, बोले कि घड़ी तुम्हारे हाथ में है कि नहीं, तू देखा कि नहीं। वो बोलता है कि देखो हमने कहा था ना कि घड़ी यहां चोर आया हुआ है, अपनी घड़ी ठीक संभाल करके रखना। अच्छा देखो हम पता लगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उसके एक लेटर के जेब में सारी घड़ियां पड़ी हुई हैं। अब ये अद्भुत चमत्कार देखो ये कैसे हो जाता है। तो परमात्मा के संबंध में तो कहना ही क्या है, अब उस बाहर भी है भीतर भी है। जैसे एक उदाहरण और हो सकता है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावसे चावचे सुनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा ते सुनते सो हम। उदाहरण देते हैं चतुर्थ श्लोकी भागवत में कि जैसे पांच महाभूतों से वस्तु बनती है और उसमें मैं होता हूं और नहीं भी होता हूं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चे भूतेश हाँ हाँ यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चेषु उच्च और अवच। उच्च का मतलब होता है ऊंची, अवच माने छोटी। बड़ी छोटी वस्तु भूत से जैसे बनती हैं और वो भूत उनमें होते हैं और नहीं भी होते हैं। अब इसे आप समझिए तो ये उदाहरण आपको यहां बाह्य अभ्यंतर का समझ में आ जाएगा। पांचों भूत से बनी हुई जो छोटी और बड़ी वस्तुएं हैं उनमें बोलते हैं, उनमें ब्रह्मा जी को समझाते हैं नारायण जी कि देखो ये भूत इसमें होते हैं भूत और नहीं भी होते हैं जी। अब ये कैसे होगा कि होते भी हैं नहीं होते हैं? पर ये पहले आप छोटी मोटी वस्तु तो पांच भूतों से व्यतिरिक्त सिद्ध करो, तब तो फिर उसमें भूतों का होना सिद्ध करोगे। नहीं समझ में आई बात? पांच महाभूतों से जो वस्तु बनती है वो पांच भूतों से कोई अलग चीज हो गए तब पांच भूतों का उसमें घुसना बन जावे। जब उससे कोई अतिरिक्त चीज ही नहीं है तो घुसेगा किसमें? अर्थात यूं कह रहा हूं कि घड़ा की सत्ता ही सिद्ध नहीं हो रही है मिट्टी के अतिरिक्त, तो मिट्टी घुसेगी किसमें? पहले घड़े की सत्ता सिद्ध करो, पहले उसे दूसरा द्वितीय सिद्ध करो, तो द्वितीय का पहले वाले पहला का प्रवेश द्वितीय में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे घड़े में मिट्टी ही बाहर भीतर रहती है, इसी प्रकार से ये दुनिया का मटेरियल यदि परमात्मा है तो परमात्मा भी घड़े की तरह बाहर भीतर है। वो बाहर भी वही है भीतर भी वही है। अब देखो ये अजा कहते हैं यहां तक हुआ था, अज का मतलब होता है जन्म। ये जन्म ही समस्त विकारों का हेतु होता है। इस परमात्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, न अस्थि है, न जायते है, न वर्धते है, न विपरिणमते है, न क्षीयते है, न नश्यति है। जो जन्मेगी वस्तु वो इन विकारों से युक्त होगी। तो जन लक्षण जितने भी विकार हैं वो सब परमात्मा में नहीं है, वह जन्मा है। परमात्मा ज्ञान रूप है, अप्राण प्राण नहीं है उसमें, वो प्राण वाला नहीं है। अब प्राण माने प्राण वाला नहीं है, अर्थात देखिए प्राण का मतलब है कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उस कर्म इंद्रियों में क्रिया शक्ति कहां से आती है? प्राण से आती है। क्रिया शक्ति प्राण से आती है, यदि प्राण ना हो जिस अंग में, जिस नस में, जिस स्थान पर, वहां पर ना तो रक्त की कोई क्रिया होती है, ना पाचन क्रिया हो सकती है, न कफ आदि निकल सकते हैं। तो प्राण है, प्राण तदुपलक्षित जो कर्म इंद्रियां हैं और उनके जो विषय हैं, इनका भी निषेध कर दिया गया, अर्थात न उसमें प्राण है और न कोई क्रिया शक्ति है, न कोई ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां हैं। अच्छा बाबा देखो, इतनी बड़ी सृष्टि किया है और कुछ भी नहीं है। यहां एक उदाहरण देखिए कि जो मनुष्य के शरीर बनते हैं, मनुष्य के शरीर, इसमें कितने वर्कर लगे हैं मनुष्य के शरीर बनाने में, या गाय को, या चिड़िया को, या तमाम प्रकार के यहां जीव प्रकट होते हैं। कितने वर्कर हैं, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी कंपनी है, क्यों जी, फिर हो तो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो फिर क्या कोई वैज्ञानिक कर रहा है? वैज्ञानिक के तो ये काम नहीं कर सकता है। इतना बड़ा सूर्य, इतने बड़े चंद्रमा, ये सागर, बड़े बड़े हिमालय जैसे पर्वत, इन सब की रचना करने वाला कौन होगा? परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा तो हो नहीं सकता है। तो उसको इनकी जरूरत नहीं होती उपकरणों की। एक छोटी सी घटना आपको सुना दूं। आपने सुना होगा नर नारायण गंध मादन पर पर्वत पर तप कर रहे थे, तो इंद्र ने कहा अपने सहयोगी को, अपने सेनापति को, कि तुम्हारा जैसे हमारा कोई इस धरती में उपकार करने वाला मित्र नहीं हो सकता है, और इस समय में संकट में पड़ा हुआ हूं, आप मेरा सहयोग करो। कामदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज बताओ क्या आपकी सेवा करूं। उन्होंने कहा कि गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, नारायण तप कर रहे हैं और मेरा इंद्रासन चाहते हैं। वो गंधमादन पर आए, बसंत को लेकर के आए, देवांगनों को साथ लेकर के आए, स्वयं आया, बहुत उछल कूद मचाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नारायण की आंख खुली देखते भी रहे, पर घबरा गए कि कहीं ऐसा न हो शंकर जी की तरह ये भस्म कर रहे हुए। उन्होंने हजारों देवियों को प्रकट कर दिया जो इंद्र के साथ आई हुई थीं, उनसे कहीं अनंत गुणा रति के समान तमाम देवियों को उत्पन्न किया। कहां से उत्पन्न किया? और फिर बोले, आपने सुना होगा कि इनमें से एक ले जाओ, जो उर्वशी थी उसको ले गए थे। तो परमात्मा को कुछ बनाने के लिए किसी साधन की, किसी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति को कुछ बनाना हो तो व्यक्ति को साधन सामग्री की जरूरत होती है। तो ये अप्राण, इसमें कर्मेंद्रियों का निषेध है, कर्मेंद्रियों के विषय का निषेध है। और फिर बोलते हैं कि ही अमना, ये मन भी नहीं है, अर्थात इसमें कोई संकल्प सिद्धि नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, मैंने ज्ञान शक्ति का निषेध कर दिया। इसके बाद शुभ्रहा, अब जब ज्ञान नहीं है और कर्म इंद्रियां नहीं है, क्योंकि ज्ञान कर्म के पहले ज्ञान की जरूरत होती है, जानाति कर होती है ना, पहले जानेगा, जानाति इच्छति कर होती, जानेगा फिर इच्छा करेगा फिर कर्म करेगा, तो ये तो सब निषेध कर दिया। तो ये कर्म से उत्पन्न होने वाले जो ऊंच नीच योनियां हैं, उन ऊंच नीच योनियों में जो कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे सबसे वो रहित है, शुभ्र है, शुभ्र स्फुट के समान। अब देखिए, अक्षरात परतः परः, ये अक्षर है ना जो अव्यक्त है, जो पहले प्रकृति की उपाधि को धारण किया है उसको अक्षर कहते हैं, उससे भी ये परे है कहते हैं। परे का मतलब है सूक्ष्म है और व्यापक है। ये अक्षरात परतः परः, आपने गीता में सुना होगा ना कि इंद्रियाणि परा न हो इंद्रिय व्यापरा मनः, तो परे का मतलब क्या होता है? परे का मतलब होता है व्यापक और सूक्ष्म। विषयों से इंद्रियां व्यापक हैं, सूक्ष्म हैं, इससे मन व्यापक और सूक्ष्म है। तो ये जो अव्यक्त है जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है उससे भी ये परे है, जिस स्वरूप का भी वर्णन करते हैं ये वो अक्षर तत्व से। इसलिए आप 15वां अध्याय में देखिए उसमें पुरुषोत्तम का वर्णन है कि दोनों पुरुषों से ये श्रेष्ठ है। उत्तम पुरुष सत्वन्या है ना, उत्तम पुरुष सत्वन्या